पृष्ठ संख्या 130, अध्याय 12, परन, टुकड़ा, गत, चक्रधार, मुखड़ा, मुखड़ा इत्यादि। संगीत का अध्ययन करने वाले छात्र के ध्यान में यह बात आनी चाहिए कि गायन का प्रस्तुतिकरण स्वर विविधता के साथ ही शब्दों से व्यक्त होने वाले अर्थ एवं भाव, इन तीन माध्यमों की समर्थ सहायता से हुआ करता है। फलतः विविध स्वराकृतियां, स्वर शब्दाकृतियां, स्वर लयाकृतियां और स्वर शब्द लयाकृतियां, इन चार योजनापूर्ण मार्गों से समर्थ गायक एक ही राग का कलात्मकता एवं अखंडता से दीर्घ काल तक प्रस्तुतिकरण कर सकता है। इसके विपरीत तबला वादन का प्रस्तुतिकरण तबले के द्वारा निर्मित भाषा के जरिए शब्द लय विविधता के मार्ग से ही हुआ करता है। इस प्रस्तुतिकरण में स्वर विविधता नहीं होती, फलतः एक ही रचना का किया गया प्रस्तुतिकरण गायन की तरह दीर्घ काल तक नहीं हो सकता। गायक दो या तीन बंदिशों के जरिए एक राग को दीर्घ काल तक प्रस्तुत करता है, किंतु उपर्युक्त कारणों से सोलो वाद तबला वादन का एक ताल में किया गया प्रस्तुतिकरण विविध प्रकार की रचनाओं द्वारा श्रृंखला पद्धति से होता है। गायन में बहुतांश में राग का प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण होता है, बंदिश उसका माध्यम होता है, किंतु कभी कभी गायन में भी तब बंदिशों का प्रस्तुतिकरण ही गायन का प्रधान हेतु हुआ करता है, राग वहां गौण होता है। स्वतंत्र तबला वादन में राग की तरह ताल ठेके का प्रस्तुतिकरण दीर्घ काल तक करना मुश्किल ही हुआ करता है। यहाँ विविध बंदिशों का ही कलात्मक प्रस्तुतिकरण वादक का प्रधान हेतु हुआ करता है, वह ताल के दायरे के भीतर रहता है। यहाँ ताल का ठेका गौण होता है। गायन में बड़ा ख्याल दीर्घ काल तक प्रस्तुत किया जाता है, छोटा ख्याल तुलना कम समय में और तराना उससे भी कम समय में प्रस्तुत किया जाता है। स्वतंत्र तबला वादन में भी विविध बंदिशें प्रस्तुत करने का काल इसी तरह उतरते क्रम से ही कम होता रहता है। पेशकार वादन तुलनात्मकतः दीर्घ काल तक प्रस्तुत किया जाता है। इसके प्रस्तुतिकरण में बंदिश मूल रचना गौण महत्व की होती है। आलापी में राग कल्पना को प्रस्तुत करना मूल हेतु हुआ करता है। पृष्ठ संख्या 131। लगभग उसी तरह का ताल ठेके से नाता दर्शाने वाला पेशकार का प्रस्तुतिकरण हुआ करता है। तत्पश्चात कायदे एवं रेले प्रस्तुत होते हैं। वे रचनाएं धीरे धीरे स्वतंत्र बंदिशों के तौर पर प्रस्तुत होने लगती हैं और यहाँ शेष रहती हैं, ताल की चौखटें और खाली भरी की संकल्पनाएं। पेशकार की तुलना में इस प्रकार की प्रत्येक रचना कम समय में प्रस्तुत हुआ करती है। उत्तरांग में प्रस्तुत होने वाली रचनाओं के दो वैशिष्ट्य इस प्रकार हैं। ये पूर्ण रचनाएं होती हैं, इनका विस्तार नहीं होता। दूसरा, आकार में यद्यपि ये रचनाएं विस्तारक्षम रचनाओं की अपेक्षा बड़ी हों, तो भी इनमें प्रत्येक रचना के प्रस्तुतीकरण में बहुत ही कम समय लगता है, फलतः उपलब्ध समय और कलाकार की कुव्वत के अनुसार इस उत्तरार्ध में विविध प्रकार की अनेक रचनाओं की मालिका ही प्रस्तुत हुआ करती हैं। ये रचना प्रकार निम्नांकित हैं। अ, प्रथमतः रंग जमाने के लिए दो तीन रोचक टुकड़ों से श्रोताओं के मन को आकर्षित किया जाता है। सर्वसाधारणतया ये रचनाएं सुंदर भाषा में सजी हुई तथा तिहाई से समाप्त होने वाली हुआ करती हैं। ब, तत्पश्चात तबले का खास काव्य रूप के तौर पर माना जाने वाला वादन प्रकार सर्वांग सुंदर गते। सभी घरानों में प्रतिभावान रचनाकार तबला वादकों ने सुंदर गतों की निर्मिति की है और संबंधित घरानों के वादक उन गतों को अपने वादन में पेश किया करते हैं। लखनऊ एवं फर्रुखाबाद घरानों की गतें समृद्ध काव्यमय भाषा में सजी होती हैं। बनारस घराने की जोशपूर्ण गत फरद और पंजाब घराने की चाचर अंग की गतें विशेष सुंदर होती हैं। दिल्ली घराने के उस्तादों ने भी किनार पर बजने वाली सुंदर गतें बाँधी हैं, जिन्हें दो उंगलियों के माध्यम से नजाकत के साथ प्रस्तुत किया जाता है। उनकी गढ़न कायदे की भाषा में होने के कारण और उनका प्रस्तुतिकरण कायदे के बाद होने की वजह से उन रचनाओं का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। विविध गत प्रकारों के विषय में पारिभाषिक शब्द शीर्षक छठे अध्याय में सविस्तार जानकारी दी गई है, विद्यार्थी को उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। क, गत के पश्चात चक्रधार गत या टुकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। भाषा और गणित के विविध स्तरों के विभिन्न परिमाणों के संयोग से और अर्थात ही रचनाकार की निर्मिति क्षमता के अनुसार विविध चक्रधार गतें निर्माण हुई हैं। चक्रधार रचना की तिहाइयों में जो विश्रांति काल होते हैं उन्हें घटा बढ़ाकर नई नई चक्रधार रचनाएं तैयार करके उन्हें बजाने के कलात्मक प्रयोग आज की पीढ़ी के युवा कलाकार करते हुए दिखाई देते हैं। पृष्ठ संख्या 132। इन रचनाओं के प्रभावात्मक प्रस्तुतिकरण में से उन कलाकारों के लय पर के प्रभुत्व की प्रतीति श्रोताओं को मिलती है। इसके बाद कलात्मक अपेक्षा पूर्ति एवं कलात्मक अपेक्षा भंग करने वाली अनाघात और अतीत ग्रह की रचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। वादन में ताजगी एवं चैतन्य को कायम रखने के लिए कभी कभी रेले रव अथवा छंद युक्त चलन प्रस्तुत किए जाते हैं। अंत में पखावज शैली में दीर्घ पल्ले के परन बजाकर तबला वादन समाप्त किया जाता है। महान ज्येष्ठ लोकप्रिय एवं प्रतिभावान वादक प्रायः उपर्युक्त वादन क्रम के बंधनों का पालन करते ही हों सो बात नहीं है। कुछ ज्येष्ठ कलाकार तो उपर्युक्त वादन क्रम का पालन नहीं करते और कुछ तो वादन के अंत में अत्यंत तैयारी में नाधीन धीना प्रस्तुत करते हैं, तो कुछ अन्य कलाकार एकाध ढंगदार और तैयार लगी लड़ी की रचना बजाया करते हैं। ज्येष्ठ कलाकारों के नियम और परंपरा का पालन न करने के कारण रसिकों विद्वानों एवं समीक्षकों को उनकी टीका नहीं करनी चाहिए। श्रेष्ठ कलाकार जब कुछ परंपराएं एवं नियम तोड़कर नया मार्ग अपनाते हैं तब कालांतर में उनका स्वीकार किया हुआ नया मार्ग ही नियम बन जाता है और कुछ काल के बाद उसे परंपरा माना जाता है। ऐसा घटित हुआ है और आगे भी घटित हो सकता है। सामान्य वादकों को यह अधिकार नहीं है, विद्यार्थियों को तो निश्चय ही नहीं है। प्रस्तुत अध्याय स्वतंत्र तबला वादन विचार साहित्य और व्याप्ति अध्याय क्रम 8 के लिए पूरक होने से छात्रों को दोनों अध्यायों का एकत्रित रूप में वाचन करना चाहिए।